गोपी जाना वल्लभ गिरिवर धारी गोपी जाना वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रजजन यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी जयो राधा माधव कुंज की धारी जयो राधा जयो राधा गिरधारी राधा गिरधारी राधे राधे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा गौरांगिताय 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 जय गौरांगिताय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रीला प्रभुपाद प्रभुपाद की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरावती नैष्टिकी। आज हम श्रीमद् भागवतम के दसम स्कंद के दसम अध्याय का श्लोक संख्या नंबर 16 से पाठ करेंगे और इनका शीर्षक है यमला अर्जुन वृक्ष का उद्धार। कृपा करके मेरे पीछे आप इन श्लोकों को दोहराइएगा। नित्यम कुशु श्याम देहस्य दरिद्रस्य अन्नकांक्षिण इंद्रियाणि अनुसूयान्ति हिंसापि विनिवर्तते नित्यं श्रुतः क्षमा देहस्य नित्यं श्रुतः क्षमा देहस्य दरिद्रस्यान्नकांक्षिणा इन्द्रियाणि अनुसूयन्ति इन्द्रियाणि अनुशुष्यन्ति हिंसापि विनिवर्तते हिंसापि विनिवर्तते। अब शब्दार्थ इस प्रकार है नित्यम सदैव शुत भूख से श्याम निर्वल देहस्य शरीर का दरिद्रस्य गरीब व्यक्ति के अन्नकांक्षिणा सदैव पर्याप्त भोजन की इच्छा रखने वाला इंद्रियाणि इंद्रियों को जिनकी उपमा सर्पों से दी गई दी जाती है,
जिनकी उपमा सर्पों से
अनुसूक्ष्यन्ति, धीरे धीरे क्षीण से क्षीणतर होती जाती है, हिंसापि अन्यों से ईर्ष्या करने की प्रवृत्ति भी, विनिवर्तन्ते काम हो जाती है। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की दरिद्र व्यक्ति सदैव भूखा रहने और पर्याप्त भोजन की चाह करने के कारण धीरे धीरे क्षीण होता जाता है। अतिरिक्त बल न रहने से उसकी इंद्रियां स्वतः शांत पड़ जाती है। इसलिए दरिद्र मनुष्य हानि प्राप्त ईर्ष्या पूर्ण कार्य करने में आसक्त होता है। दूसरे शब्दों में ऐसे व्यक्ति को उन तपस्याओं का फल स्वतः प्राप्त हो जाता है जिसे संत पुरुष स्वइच्छा से करते हैं। तात्पर्य अनुभवी डॉक्टरों का मत है कि मधुमेह रोग अधिक खाने से और क्षमा रोग कम खाने से होता है। हमें न तो मधुमेह बनने नहीं क्षमा मार्ग ग्रस्त होने की कामना करनी चाहिए। यथार्थ अर्थ प्रयोजनम्, हमें कम खाना चाहिए और इस शरीर को कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होने के लिए सुरक्षित रखना चाहिए। श्रीमद् भागवत में अन्यत्र कहा गया, प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय के दसम श्लोक में कहा गया है, कामस्य इंद्रिय प्रीतिर् लाभो जीवित यावत जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यस्य चेत् कर्मभि। मानव जीवन का असली कार्य अपने को आत्म साक्षात्कार के लिए स्वस्थ रखना है। मानव जीवन इंद्रियों को व्यर्था बलवान बनाने के लिए नहीं, जिससे वह रोगग्रस्त हो जाए और लड़ाई झगड़े की भावना लेकर ईर्ष्यालु बने। किंतु इस कलयुग में मानव सभ्यता का इतना विपत्तन हुआ है कि लोग व्यर्थ ही अर्थ विकास में वृद्धि करने अत्याधिक कसाई घर मदिरा लाभ तथा व्यसनलय खोल रहे हैं। इस तरह सारी सभ्यता चौपट हो जा रही है। होम ज्ञानतिमिरांदस्य ज्ञानंजन शलाख्या चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददापि स्वपदांतिकम्। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं साद्वदूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्ते। सप्तकांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी ऋषुभानुसुधे देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पत्रुभ्य कृपा सिंधुभ्य पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। जय श्री श्री राधा गिरधारी भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय। अब यहां पर दरिद्र की स्तुति की जा रही है, बताया जा रहा है कि किस प्रकार एक दरिद्र जो अवस्था है वो व्यक्ति को कैसे तपस्याओं में लगा देता है। तो ये दरिद्रता एक ऐसा साधन है जो व्यक्ति को, एक किसी कवि ने कहा है कि उसे सिद्धि प्राप्त करा देता है ये दरिद्रता के द्वारा। तो कहा गया है कि एक समय की बात थी कि एक बड़ा धनी व्यक्ति था और धनी व्यक्ति होने के कारण उसके मित्र इर्द गिर्द भटकते थे और उसके चारों बाजू उसके केवल मित्र हुआ करते थे, संबंधी हुआ करते थे। मगर हुआ यूं कि उनका धंधा पूरा चौपट हो गया और पूरी तरह ऐसे चौपट हुआ कि उसका घर भी बिक गया और सड़क पर आ खड़ा हो गया। अब ऐसी अवस्था में वो अपने मित्रों के साथ पूछ रहे, अब मित्रों के पास भीख मांग रहे, मित्र भी उनको देख भी नहीं रहे, कोई उसे नहीं देख रहा है, सब उससे दूर हो गए। तो किसी एक मित्र के पास रोता हुआ गया तो किसी एक मित्र ने उसको एक रुपया दान दिया। तो इन्होंने उनको पूछा कि अब तुम्हें कैसे महसूस हो रहा है। तो वो कहते अहो दरिद्र नमस्तुभ्यम, मैं उस दरिद्र देवताओं, जो दरिद्र प्रधान करने वाले उस देवताओं को मैं सादर प्रणाम करता हूं। अब कौन कह रहा है? ये जो व्यक्ति दरिद्र अवस्था में पड़ गया वो कह रहा है अहो दरिद्र नमस्तुभ्यम सिद्धोहम त्वत दर्शनम, अब मैंने सिद्धि को प्राप्त कर लिया है, ये दरिद्रता मेरे जीवन में आने के कारण मुझे एक सिद्धि प्राप्त हो गई है। तो वो व्यक्ति पूछता है क्या सिद्धि प्राप्त हो गई? तो कहते हैं पश्यामि अहम जगत सर्वम, मैं सभी जगत को देख रहा हूं, सभी लोग को मैं देख पा रहा हूं। तो फिर क्या कहते हैं नमस्पश्यन्ति सर्वे, नमः पश्यन्ति सर्वे, लेकिन लोग मुझे नहीं देख पा रहे, मुझे मेरे पास एक ऐसी सिद्धि आ गई है कि जीते जी लोगों के सामने खड़े रहकर भी लोग देख नहीं पा रहे मुझे, तो है ना सिद्धि। तो वो कहने लगे कि ये दरिद्रता है ये बड़ा ही लाभदायक वस्तु है, इस दरिद्रता अवस्था में ही मुझे ये शिक्षा मिल गया कि वास्तविक सही मित्र कौन है और गलत मित्र कौन है। तो जब तक हमारे पास ये धन की प्राप्ति रहती है तब तक पता नहीं लगता, भेद करना मुश्किल हो जाता है कि वास्तविक हमारे सच्चे मित्र कौन है और कौन केवल झुटला रहा है। जैसे ये भौतिक जगत का जो मित्र है वो केवल भौतिक वस्तु के लेन देन तक ही रहते हैं और उनका कुछ भौतिक स्वार्थ है तो वो मित्रता बना के रखते हैं, जैसे उनका भौतिक स्वार्थ पूरा हो गया तो उन लोग अपने काम में निकल जाते हैं। गौरांग प्रभु इसमें बहुत अच्छा एक उदाहरण बताते हैं। तो बताते हैं कि एक समय तीन मित्र थे, अब ये तीनों मित्र लोग मिलकर उन्होंने खीर बनाने की योजना की और उन्होंने खीर बनाया तो खीर बनाते बनाते बहुत कम हो गया और केवल एक ही वाटी बचा। तो अब ये प्रश्न हुआ कि अब तीन है लेकिन एक खीर को खाएगा कौन? तो तीनों लोग मिलकर आपस में चर्चा किए और कहने लगे कि ठीक है इसे हम रख देते हैं, फ्रीजर में रखते हैं, सुबह उठकर देखते हैं और जो वही व्यक्ति इसे खाएगा जो अच्छा सपना देखेगा। तो बोला ठीक है। तो दूसरे दिन सुबह उठकर देखा तो खीर का कटोरी खाली। तो बोला अरे खीर का कटोरी कैसे खाली हुआ, ये कौन ले लिया। तो आपस में चर्चा होते होते तीनों में से एक जन ने कहा क्षमा करिए इसका उत्तरदायित्व मैं हूं। बोला अरे तुमने खाया, तुमने हमें बताया कि नहीं। बोले ठीक है हम मैं बताता हूं मेरा कारण क्या है, लेकिन पहले हम सुन लेते कि किसका क्या सपना था। तो पहले वाले ने कहा कि इस खीर को खाने का पूरा हक मेरा था। कैसे? वो खीर को खाने का हक पूरा इसलिए मेरा था क्योंकि मैंने सपने में ये देखा कि मेरे सपने में ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने कहा चलो ब्रह्मलोक में सैर करते हैं। तो ब्रह्मलोक में मैं सैर करने चला गया था और अनेक अनेक स्थान का दर्शन करके आया। बोला अच्छा। तो दूसरे को पूछा तो तुमने क्या किया। तो दूसरे ने कहा इनके सपने में तो ब्रह्मा आया है, मेरे सपने में तो महादेव आए। बोला अच्छा। और स्वयं मेरा हाथ पकड़ के कैलाश पर्वत लेकर गए और अलग अलग प्रकार की नजारों का दर्शन कराया। तो इनसे तो बड़ा सपना मेरा था, तो मुझे मिलना चाहिए था खीर खाने का। तो बोला अच्छा। तो तुम्हारा तीसरे को पूछा तो तुमने क्या देखा। अब मैं क्या बताऊं, मेरे सपने में तो स्वयं हनुमान जी आए। अच्छा। और हनुमान जी आकर गदा दिखाने लगे, बोले चल खीर खा। तो वो गदा देखकर तो मैं थोड़ा हड़बड़ा गया। और फिर तो इन दोनों जन ने कहा ऐसे कैसे तुमने खा लिया, हम लोग को बताया नहीं, कम से कम हमें आके बताना चाहिए था। तो लम्बे आया था आप लोग को बताने, मैंने हनुमान जी को कहा कि मैं उन लोगों को मेरे मित्र को भी तो बोलकर आता हूँ। बोला ठीक है जाओ जाकर बोलो। तो जब गया तो आप थे ही नहीं, एक कहते ब्रह्म लोग दूसरे कहते शिव लोग। तो मैं अकेला खा लिया। तो भौतिक मित्रता केवल यही तक सीमित रहती है कि केवल हमारे भौतिक स्वार्थ तक वो भौतिक मित्र बने रहते हैं। तो इसीलिए संत पुरुष लोग अपने स्व इच्छा से निर्धन होकर दरिद्रता की अवस्था को प्राप्त करके वो ऐसी तपस्याओं को ग्रहण करते हैं जिस तपस्या से सच्चाई के मार्ग में चलने के लिए और आसानी पड़े। और ये दरिद्रता एक तरह से देखा जाए तो भगवान को प्राप्त करने के लिए बहुत सरल मार्ग बताया गया है दरिद्र अवस्था में। जैसे बाइबल में भी यीशु मसीहा कहते हैं कि जो इस जगत में जो गरीब है उसके लिए भगवान बहुत करीब है और जो इस जगत में बहुत अमीर है उसके लिए भगवान बहुत दूर है। उसे भगवान प्राप्त करना बहुत परिश्रम या बहुत तपस्या करने की आवश्यकता पड़ेगी, तब जाकर उसे भगवान की प्राप्ति होगी। तो ऐसे संत महापुरुष लोग जो अपने स्व इच्छा से इस धन को परित्याग करने का मुख्य कारण क्या है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम के एकादश स्कंद में इस धन के विषय में बताया गया कि यह धन का क्या क्या दुष्परिणाम है। तो कहते अर्थस्य साधने सिद्धे उत्कृष्टे रक्षणे व्यये। तो बताया जाता है कि ये जो धन को प्राप्त करने के लिए किस किस प्रकार की समस्याओं से उसे गुजरना पड़ता है। तो पहले कहते अर्थस्य साधने, तो ये जो धन जो प्राप्त करने के लिए ही व्यक्ति को कितने प्रकार के प्रयास करने पड़ते हैं, अनेक प्रकार के प्रयास करने पड़ते केवल धन को इकट्ठा करने के लिए। जैसे मुचुकुंद अपने अनुभूति के द्वारा ये वर्णन करते हैं, जब मुचुकुंद ने जब देवगणों को उन्होंने जब सहयोग किया, युद्ध उनके साथ युद्ध किए, तो युद्ध कर उनको जब प्रसन्न किए तो उनको भरपूर प्रचुर मात्राओं में धन प्राप्त हुआ। तब उस समय मुचुकुंद इसी धन के विषय में वर्णन करते कि यह धन की क्या स्थिति है। तो कहते हैं
प्रमातम उच्चिष्टिर इति कृत चिंतया। तो पहले तो व्यक्ति को किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए उसे पागल बना देता है, कोई वस्तु ग्रहण करने के लिए वो निरंतर उसी का चिंता करता है, और वो वस्तु के प्रति जब उसकी आसक्ति बनती है तो उसे प्राप्त करने के लिए दूसरा स्टेप क्या है, तो कहते हैं प्रवृत्त लोभम विषयेषु लालसम। अब वो उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए अब उसका दूसरा ये रहता है कि अब वो धन के इकट्ठा करने के चक्कर में रहता है, क्योंकि विषयों के प्रति इतनी लालसा बढ़ जाती है कि उस विषय को प्राप्त करने के लिए अब धन की आवश्यकता है। तो आगे कहते हैं लेकिन अवस्था क्या है, शूलम लेलिहानो हरि इवाकुम अंतक। तो कहते हैं कि भगवान किस प्रकार उस सर्प के समान है जो सर्प निरंतर अपने जीभ को बाहर निकलता है और निरंतर वो चाटता रहता है और वो ये देखता रहता है कि अब इवाकुम जो चूहा जो है वो चूहे को खाने के लिए वो केवल प्रतीक्षा करता है यहाँ पर ये सर्प। अब चूहा क्या करता है, इतना मेहनत करके बिल बनाता है, उसमें अनेक अनेक सामग्री को इकट्ठा करके रखता है, मगर सर्प आके उसे एक ही वार में दबोच लेता है। और यहाँ पर निसहारा चूहा जो है अपने प्राण को गवा देता है। वैसे ही लोग अपने जीवन में धन को इतना इकट्ठा करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं केवल इस धन को इकट्ठा करने के लिए उस चूहे के भांति, लेकिन परिणाम क्या है, ऐसी अवस्था आती है कि उनके समक्ष उस चूहे के समक्ष सर्प आ रहा है और चूहे को खबर नहीं। वैसे ही लोगों के समक्ष जब काल रूपी मृत्यु सर्प आकर खड़ा होता है तो वो उसको देख नहीं पाता और व्यर्थ ही अपने जीवन को गवा देता है। तो ये प्रथम दोष का वर्णन किया गया। फिर दूसरा वर्णन किया गया है सिद्धे, यानी कि इस धन को प्राप्त होने के बाद क्या होता है। ठीक है, पहले तो धन प्राप्त करने के लिए इतना भरपूर प्रयास, अब जब प्राप्त हो गया तो फिर क्या। तो कहते हैं को गृथे पंडितो लक्ष्मी त्रिपिष्ट पतेर अपि ययाहम आसुरम भावम नित्यो आधाय विभु देश वृता। तो कहते हैं कि जब इंद्र जब स्वर्ग के आभूषणों से जब स्वर्ग के ऐश्वर्य से जब इंद्र जब उसी में रचे पड़े थे और पूरी तरह उसमें निमग्न हो चुके थे, और ऐसे ही इंद्र अप्सराओं के नृत्य को देखकर पूरी तरह उसमें चूर थे, उसी समय वहां पर उनके गुरुदेव बृहस्पति वहां पर आ पहुंचे, और जैसे ही बृहस्पति आए मगर इंद्र ने इस प्रकार हरकतें की कि मैंने गुरु को नहीं देखा, जबकि इंद्र को आहट हो चुका था कि गुरुजी आ चुके हैं। तो शिष्य का कर्तव्य बनता है कि गुरु के समक्ष आदर सम्मान देकर वो अपने स्थान से उठ खड़े हो जाए, मगर यहाँ पर इंद्र विषयों भोग में इतने प्रमत्त हो चुके थे, इतने वो अहंकार से इतने शिकार हो चुके थे कि उन्होंने ये भी भूल गया कि मुझे गुरु को आदर देना है, और न देकर उन्होंने गुरु के प्रति अपराध कर दिया और तुरंत ही बृहस्पति उस स्थान को त्याग दिए। तो वहां पर वर्णन आता है कि इंद्र अपने आप को धिक्कारते हुए ये कहते हैं कि हाय है मुझे अपने आप पर घृणा आ रही है कि मैं अपने ही ऐश्वर्य से इस प्रकार मेरे सर पर नशा चढ़ गया कि मैं इस घमंड के नशे से मैंने अपने गुरुजी को आदर सम्मान नहीं दे पाया। तो इंद्र अपने धन ऐश्वर्य को धन ऐश्वर्य के प्रति वो निंदा करते हुए वो बता रहे कि ये जो ऐश्वर्य जो है, संपत्ति जो है, वो वास्तविक व्यक्ति को पागल बना देता है और ये केवल प्राप्त करने का दुख, प्राप्त हो जाने के बाद दुख, ये दूसरे प्रकार के कष्ट धन के प्रति वर्णन किया गया है। लेकिन तत्पर भी लोग इस धन को प्राप्त करने के लिए कितने प्रकार के प्रयास करते हैं। ऐसे सार्वभौमा प्रभु अपने लेक्चर में बताते हैं कि कवि ने जब शर्ट सिया तो शर्ट सीने के साथ उन्होंने जो पॉकेट जो है वो बाएं तरफ रखा। वो बाएं तरफ इसलिए रखा क्योंकि लोगों का सबसे बड़ा प्रिय जो है वो है धन है, और धन इतना प्रिय है कि वो कहा गया मनी स्वीटर देन हनी, शहद मीठा है क्या नहीं है अगर देखना है तो उसे चखना पड़ेगा तब पता लगेगा कि शहद मीठा है। लेकिन धन इतना स्वादिष्ट है कि केवल पासबुक के बैंक बैलेंस देखते ही स्वाद मिलने लगता है, मिठास मिलने लगता है केवल देखने मात्र से। तो वैसे ही ये धन इतना प्रिय, इतना मिठास है कि लोग इस धन को कहां रखते हैं, बाएं तरफ के पॉकेट में, क्योंकि बाएं में ही जहां पर हृदय माना जाता है तो हृदय से एकदम सटा के रखते, कहीं लंबा नहीं है, नजदीकी है। तो इसीलिए लोगों का ये जो धन इतना प्रिय होने के कारण पॉकेट भी बाएं तरफ बनाया। तो फिर सार्वभौमा प्रभु आगे भी कहते हैं मगर भगवान उससे भी बड़े चतुर हैं। वो कहते हैं प्रणाम भी करना है तो मुझे बाएं तरफ रखकर करना, क्योंकि अंदर का जो माल है वो मेरा है। तो वैसे ये धन के विषय में बताया जाता है कि ये धुंधु भी तू नितराम अचेतना तद धनम तन मुखादपि इत्थम त्वत निनम तद इत्थम त्वत निना धन प्रवर्तते किम पुनरपि भवेत् सचेतना। तो वो कहा गया धुंधु भी जो होता है, जो धम धम बजता है, वो धुंधु भी जब बजने लगता है तो क्या कहता है, तो कहता है धन 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 धन। तो वो अचेतन वस्तु जब धन 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 कहता है तो कहते हैं कि अगर उसी अचेतन वस्तु में अगर चेतन आ गया तब किम पुनरपि भवेत् सचेतना, तो उसके विषय में क्या कहा जाए उसके लिए कलम नहीं है। अगर जब वो अचेतन वस्तु धन धन कर रहा है तो अगर उसके अंदर चेतन आ गया तब तो फिर कमाल हो गया। तो वैसे ही ये जो धन एक ऐसी वस्तु है जिसे व्यक्ति प्राप्त करने के लिए इतने लालायित रहते हैं, और फिर उसी धन के विषय में अब आगे वर्णन करते हैं कि जब पहले तो प्रयास, इतना प्रयास करने के कष्ट, फिर दूसरा कष्ट बताते हैं कि अब प्राप्त हो गया तो उसके बाद क्या कष्ट, यानी कि केवल घमंड के नशे में चूर। अब तीसरा वर्णन करते हैं उत्कृषे, उत्कृषे यानी कि वो अब धन मिलने के बाद वो उस धन को बढ़ाने के लिए चेतनाओं में फंसा रहता है। ये जो धन प्राप्त करने के बाद जो कमियां हैं, ये सारी कमियां ग्यारहवें स्कंद में वर्णन किया गया है। तो उसके अनुसार यहां पर बताया जाता है कि उत्कृषे, अब धन और अधिक बढ़ाने के लिए वो केवल अपने आप को उसी में वो निरंतर प्रयास में लगा रहता है। तो ऐसे बताया जाता है आशाना मनुष्य कश्चित आश्चर्य संकला बद्ध एव प्रविष्टन्ति मुक्त तिष्ठन्ति पंगुवत। तो कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के अंदर आशाओं का जो कामनाएं हैं वो जितने अधिक बढ़ता है उतना ही अधिक दौर जोर से और दौड़ लगाता है। लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में किसी भी प्रकार की आशाओं को नहीं रखा, तो वह व्यक्ति एक जगह बैठकर शांति से बैठा रहता है, क्योंकि उसके अंदर कोई आशा नहीं है। तो जब भौतिक कामनाओं की इच्छा जब बढ़ती है, तो भौतिक कामनाओं की इच्छा ही उसे और उसके अंदर वो ईंधन को बढ़ाती है भगाने के लिए। आज के तारीख में लोगों को भगाने के लिए जो भौतिकवादी जो है वो किस प्रकार का ईंधन दिखाते, दो प्रकार के ईंधन दिखाते, एक है हिरण्य, दूसरा है कश्यपु, यानी कि धन धनलक्ष्मी, दूसरा है रूप लक्ष्मी। यही दो वस्तु को दिखाकर लोगों को भगा रहे। इसलिए कोई भी प्रोडक्ट देखिए, हर प्रोडक्ट का एडवर्टाइज करना है तो उसके बगल में एक स्त्री को खड़ा कर देते हैं, और वो किस लिए, वो इसलिए कि वो प्रोडक्ट की जो महिमा है वो उस स्त्री को देखकर बढ़ जाए। तो लोगों का केवल भगाने का जो ईंधन केवल यही दो है, वो है हिरण्यकशिपु। तो जिस व्यक्ति ने अपने हृदय में कामनाओं को बढ़ाया है, तो वो कामनाओं को पूर्ति करने के लिए वो कितना भी धन संग्रह करेंगे, तत्पर भी वो उस धन से संतुष्टि प्राप्त नहीं करेगा, केवल और धन और धन और धन की आकांक्षाओं में लगा रहेगा। तो ये तीसरे प्रकार के दोष। अब इतना ही नहीं, फिर चौथे वर्णन करते रक्षा रक्षणे। अब इसके बाद उसको रक्षा करते हुए उसे संभाल के रखने के लिए ये चौथे प्रकार के कष्ट। तो लोग धन को इकट्ठा करके रखते हैं, और धन को इकट्ठा करके क्या करते हैं, केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए उसका उपयोग करते हैं। तो होता क्या है, केवल उसके जीवन में दुर्भाग्य की शुरुआत हो जाती है। जैसे लक्ष्मी जी, वर्णन आता है कि लक्ष्मी जी वैकुंठ में भी झाड़ू लगाती है। अब प्रश्न ये आता है कि वैकुंठ में धूल कहां से आए झाड़ू मारने के लिए, वहां पर कोई कचरा है क्या? नहीं। बताया जाता है कि लक्ष्मी जी स्वयं अपने आप को सौभाग्य मानती है कि जब लक्ष्मी जी जब वैकुंठ में जब झाड़ू मारती है, तो वो जो सौभाग्यवती जो सबको आशीर्वाद बरसाती है, जिसके लिए पूरा संसार भाग रहा है, वही सौभाग्यवती स्वयं अपने आप को सौभाग्यवती समझती है जब वो नारायण की सेवा करती है। तो वैसे ही अगर धन को इकट्ठा करके रखते जाते हैं, और उस धन को अगर भगवान की सेवा में अगर उपयोग नहीं करते हैं, तो क्या होगा? तो वही व्यक्ति अपने जीवन में दुर्भाग्य के ताला को खोल देता है। तो उसका दुर्भाग्य वहां से शुरू हो गया, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में इस धन को, इस लक्ष्मी को नारायण की सेवा में ना लगाया। और यही स्थिति थी रावण की। रावण ने धन वगैरह सब इकट्ठा, वो रावण का क्या मकसद था? रावण ने जो भगवान की जो संपत्ति थी, लक्ष्मी जैसे सीता मैया, उस सीता को रावण ने सोचा कि इसका अकेला मालिक मैं बनूंगा। लेकिन परिणाम क्या हुआ, जब सीता मैया ने जब लक्ष्मण रेखा पार की, उसी समय सीता मैया तो अग्निदेव के द्वारा सुरक्षित हो गई, और जो लक्ष्मण रेखा को पार किया वो था सीता मैया की परछाई। अब भगवान की अंतरंगा शक्ति के मूर्तिमान स्वरूप का परछाई बहिरंगा शक्ति के मूर्तिमान स्वरूप कौन है? दुर्गा देवी। अब रावण सोच रहा था कि मैं लक्ष्मी को लेकर जा रहा हूं, लेकिन उसका गलत फहमी था, लक्ष्मी नहीं था, वो दुर्गा थी। अब दुर्गा के हाथ में कोई कमल का फूल नहीं है, अब उनके हाथ में क्या है? त्रिशूल। अब यहां पर रावण स्वयं अपने ही हाथों से अपने जीवन का दुर्भाग्य की शुरुआत करा दिया, क्योंकि उन्होंने भगवान की संपत्ति को भगवान से विलग कर दिया और यहां पर समस्या शुरू हो गई। तो वास्तविक सौभाग्य कैसे होगा जब भगवान की संपत्ति को भगवान की सेवा में लगाते हैं। और वैसे ही श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि मैं भी हनुमान की तरह हूं। हनुमान ने क्या किया था, लंका में छलांग लगाकर उन्होंने सीता मैया को जाकर संदेश दिया, सीता मैया और प्रभु राम के मिलन के लिए उन्होंने अपने जीवन में एक सेवा को धारण किया। वैसे ही श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि मैं भी वो रावण लोग जो अपने तिजोरी में सीता को छुपा के रखे हैं उनसे मैं लेकर नारायण की सेवा में लगाता हूं। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि मेरा फोटो अगर खींचना है तो बहुत सारे धन को सामने रखो और दोनों हाथ को मैं ऐसे कर रहा हूं, ऐसे निकालो, ताकि प्रभुपाद बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि इस धन का वास्तविक उपयोग कैसे किया जाता है। तो उसे कहते हैं सौभाग्य। इसलिए यह धन जब प्राप्त हो जाता है तो इस धन को अगर कोई ठीक से अगर उपयोग कर लेता है तो वो वास्तविक, उसके पास कुछ नहीं है, उसने सब कुछ भगवान को अर्पण कर दिया, लेकिन बाहरी दृष्टिकोण से दिख रहा है कि अब ये निर्धन हो गया है, लेकिन निर्धन नहीं, सबसे बड़ा धनी है, वही व्यक्ति सबसे बड़ा धनी है। और जो व्यक्ति सारे धन को संग्रह करके रखा है लेकिन भगवान की सेवा में नहीं लगाया तो वास्तविक उसकी स्थिति क्या है, वो निर्धन है, उनकी जीवन किस प्रकार है, दरिद्रता की तरह है। इसलिए निष्कपट भाव से अगर भगवान की भक्तों की अगर सेवा करेंगे तो निश्चित रूप से वो इस धन के कमियों को दूर कर सकता है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे और प्रभुपाद जी के शिष्य इनके पास प्रभुपाद जी के शिष्य के मन में ये विचार था कि मैं प्रभुपाद जी के पादुका अपने पास रख लूं और इनके चरण पादुकाओं को इनके जो पैरों में जो धारण किया हुआ जो चप्पल जो है, अगर इस चप्पल को मैं रखूंगा तो भविष्य में लोगों को दिखा भी सकता हूं और इसको पूजनीय रूप में रख लूंगा अपने पास। तो उन्होंने क्या सोचा कि जो प्रभुपाद जी के पास जो चप्पल था उसी का ही हूबहूब उन्होंने दूसरा चप्पल खरीदा। अब ये तो जूना था तो उन्होंने ये जूना को हटा दिया, नया को रख दिया, ये विचार से कि एक दिन प्रभुपाद डाल दिए तो उसको मैं अपने ये नया को लेकर अपने घर पे रख दूंगा, जूना को वापस रख दूंगा। और ऐसे सोचकर उन्होंने जूना उठा लिया, नया रख दिया, और नया रख दिया तो अब दूसरे दिन आया एक्सचेंज करने जूना को वापस रख के नया लेने के लिए। अब जब आया तो ढूंढ रहा मिल ही नहीं रहा है। अब वो तब इतने में कुछ ही समय के बाद प्रभुपाद जी के असिस्टेंट बाहर आए दरवाजा खोल के और उन्होंने कहा इनको कि प्रभुपाद जी ने आपको कुछ संदेश दिया। तो इन्होंने कहा मुझे संदेश दिया प्रभुपाद? वो तो आश्चर्य यह हो गया कि प्रभुपाद को पता लग गया कि मैं यहां आया हूं। बोला मुझे क्या संदेश दिया? बोला तुम्हें यह संदेश दिया है कि पहले तो वो आपको धन्यवाद किए कि आपने उनको नया चप्पल दिया और दूसरा बात ये कहा कि ये जो जूना चप्पल तुमने लिया वो अपने पास रखो और तीसरा संदेश ये दिया है कि निष्कपट भाव से सेवा करो, कपटी मत बनो। तो वास्तविकता जब कोई निस्वार्थ रूप से भगवान को अपनी सारी संपत्ति को अर्पण करता है तो वो भले ही
बाहरी दृष्टिकोण से निर्धन दिख रहा है, लेकिन वो वास्तविक में सबसे बड़ा सौभाग्यवान व्यक्ति है। तो इसी धन के विषय में हमने आज कुछ चर्चा की है। वैसे हमारे क्लास त्यालुग और प्रभु का था, उनका कुछ किसी कारणवश नहीं दे पाए, तो कुछ थोड़े समय पर मुझे कुछ क्लास की तैयारी करनी पड़ी, तो इसके लिए क्षमा करिएगा। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की।